धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर छह
ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाऊणं लोयालोयपयासं गोदमथेरं पुनोजिनं वीरम् णमिऊणखेत्तसुत्तम् जहो वये संपयासेमो।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड है जीवस्थान और उसका क्षेत्रानुगम चल रहा है हमारा। चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 33 पर हम आ गए हैं। यहाँ क्षेत्र के प्रकरण में, यानी पहले तो गुणस्थानों में क्षेत्र बताएंगे। मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते, ये सामान्य से यहाँ ओव से कथन चलेगा। जब क्षेत्र बताना है तो उसमें पांच प्रकार से बताया जाता है। एक तो सामान्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तीर्यक लोक और मनुष्य लोक। मनुष्य लोक सामान्य तो पहला हुआ, यानी मनुष्य लोक से संख्यात गुणा है, असंख्यात, जो कुछ कथन करना है उसकी बात यहाँ बताएंगे। तीर्यक लोक यानी बीच वाला, 1,00,000 एक राजू बाय 7 राजू बाय 1,00,000 योजन, उसको तीर्यक लोक कहेंगे। उसकी हाइट 1,00,000 योजन की लेना है। अधोलोक ऊर्ध्वलोक तो मालूम। अब जहाँ अभी क्षेत्र मनुष्यों का नहीं, वर्तमान में वो जीव अभी गुणस्थानों में पहले घटते, तो उस गुणस्थान वाले कितने क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो उसमें कौन कौन सी बातें लगानी हैं, तो 10 प्रकार से उसका देखना है हमको। एक तो स्वस्थान, स्वस्थान ने रहने का ठिकाना, विहारवत स्वस्थान ने विहार करके कहाँ कहाँ जाते हैं वो उसकी, यानी ये तो दो स्वस्थान के दो भेद हो, स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान। फिर 7 प्रकार के तो समुद्घात है, उसमें वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैकिरिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात, यानी वो 2 और ये 7 9 हो गए। और उपपाद, उपपाद यानी जन्म के पहले समय में जो प्रदेश फैले हुए मारणांतिक किए हुए जीव के, पहले मोड़ तक तो उसके प्रदेश आ गए मरण के पश्चात, तो अभी उसके प्रदेश कैसे फैले, दूसरे और तीसरे दंड में फैले, किसी का एक दंड में फैला है। बिना मारणांतिक के जो रुजुगति से जाते हैं, उसका उपपाद में उसको शरीर ग्रहण ही चालू हो जाता है, यानी उसकी अवगाहना तो छोटी होगी। जीव का क्षेत्र है, उसकी अवगाहना भी, प्रदेश कितने लंबे फैले है उसकी यहाँ बात क्षेत्र में लेना है, वर्तमान की बात लेना। मिथ्या दृष्टि तो वर्तमान में अनंत है, तो पूरा लोक सिद्ध हो जाता है। जब मार्गणाओं में घटित करेंगे तो बात अलग होगी, वो तब मार्गणाओं में मार्गणा की चर्चा तब करेंगे। अब यहाँ तो बताया है कि मिथ्या दृष्टि जीव कौन कौन सी अपेक्षा से पूरा लोक है, तो स्वस्थान की अपेक्षा भी, स्वस्थान स्वस्थान की अपेक्षा पूरा लोक है। अभी स्वस्थान में रहते हुए वेदना समुद्घात करेंगे, कषाय समुद्घात करेंगे, मारणांतिक समुद्घात करेंगे, तो भी पूरा लोक सिद्ध हो जाता, और उपपाद में भी पूरा लोक। ये 5 प्रकार से तो पूरा लोक होता है। ये बात हमने कल पढ़ी थी, देखो पेज नंबर 31 पर, देखो 31 एक दो पेज पहले ले लो। देखो इस प्रकार स्वस्थान के दो भेद, अभी हमने जो 10 टोटल गिने ना उसकी बात कर रहे हैं। समुद्घात के साध भेद और एक उपपाद, इन 10 विशेषणों से यथासंभव विशेषता को प्राप्त, यानी इसको कंसिडर करते हुए जो ऐसे जो मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थानों के क्षेत्र का निरूपण करते, हर एक गुणस्थान में उनकी उनका क्षेत्र बताया, अपना प्रयोजन तो अभी क्षेत्र से है। पहले हमने द्रव्य प्रमाणानुगम में उनकी संख्या देखी थी, अब उन्हीं का क्षेत्र देखना है। तो कहते स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांति समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते तो सर्वलोक में रहते, ये बात हमने कल पढ़ी थी। क्योंकि हमने ये बात देखी थी कि पूरे जीव राशि का संख्यात वा भाग उसमें से कम कर दे, यानी संख्यात बहुभाग, इतने तो स्वस्थान वाले हैं, स्वस्थान स्वस्थान वाले हैं। अब उसमें से वेदना समुद्घात और कषाय को समुद्घात को प्राप्त हुए जीव भी जीव राशि के संख्यात वे भाग प्रमाण, वो भी अनंत। मारणांतिक को प्राप्त हुए जीव भी सर्व जीव राशि के संख्यात वे भाग प्रमाण, और उपपाद राशि सर्व जीव की राशि के असंख्यात विभाग प्रमाण है। उपपाद का एक समय है और जीवों की एवरेज भी आयु हम देखेंगे तो अंतर्मुर्त होगी होगी, अनंत उनकी अपेक्षा बात करेंगे तो। इसलिए ये सब पांचों जो राशि हमने देखी ना, स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणांतिक और उपपाद वाले, तो ये सभी राशियां अनंत है, पूरे लोक में पाई जाती है। अब आते हैं हम पेज नंबर 32 पर। अब जो बीच वाला पैराग्राफ है ना, वहां विहार व स्वस्थान मिथ्या दृष्टि की बात है। तो कहां रहते थे लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, आप कहेंगे वो 8/14 वो स्पर्शन में आएगा, क्षेत्र में नहीं। क्षेत्र में वर्तमान में एट ए टाइम विहार करने वाले जीव कौन हो गए, अभी देवों की अपेक्षा मैक्सिमम एरिया होती है, फिर भी देव तो असंख्यात है, पूरी राजू वाली एरिया कवर नहीं होगी, ख्याल में आती है। हाँ, इसलिए तो वो क्षेत्र में उसको नहीं लेना 8/14 वाला, वो हम स्पर्शन में देख, कहीं ना कहीं से किसी न किसी जीव ने विहार किया, वो स्पर्शन की बात अलग है। अब हाँ, अपनी बात क्षेत्र की चल रही है, तो वर्तमान में विहार करने वाले जीव ने कितना क्षेत्र व्यापा है, तो कहते लोक का संख्या था, क्योंकि वहां नंबर ऑफ जीव मल्टीप्लाइड बाय उनकी अवगाहना लेनी और कहां तक जा सकते उसको भी लेना। अब ये विशेषार्थ उसी का 32 में विशेषार्थ देखते हैं, क्योंकि विहार करने वाले कौन है, तो त्रस पर्याप्त जीव है। उसमें भी जो मनुष्य तीरें जो वो विहार कितने, उनकी लिमिटेड एरिया है, तो त्रस का एक पर्याप्त जीवों का प्रमाण क्षेत्र की अपेक्षा सुचंगुल के संख्यात वे भाग के वर्गरूप भागहार से भाजित जगत प्रतर प्रमाण बताए। जगत प्रतर का असंख्यात भाग अपनी स्थूल भाषा में कौन, त्रस पर्याप्त राशि संख्या उनकी। अभी इस जो ये इनका जो टोटल प्रमाण है उसके संख्यात वे भाग प्रमाण ही विहार करने वाली राशि। अब ये विहार करने वाली राशि कितनी है, तो जो टोटल त्रस पर्याप्तों का संख्यात भाग, अब इसको मल्टीप्लाइड करना, ये तो संख्या हुई, इसको उनके एवरेज अवगाहना से हम गुणा करेंगे। तो यदि एक त्रस पर्याप्त जीव की मध्यम अवगाहना, मध्यम अवगाहना का अर्थ होता है एवरेज, संख्या घनांगुल प्रमाण मानकर उससे विहार करने वाले राशि के प्रमाण को गुणित भी किया जाए, तो भी उसका जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहना सिद्ध होता है। ये श्रेणी का असंख्यात भाग होता है, और हमने जो टोटल संख्या देखी तो प्रतर का असंख्यात भाग था, इसलिए सिद्ध होता है कि विहार करने वाली त्रस राशि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के असंख्यात वे भाग में रहती है। कि ऊर्ध्वलोक का भी हमने कितना वो 100 कितना लिखा था, 147 कितना 147 देखा था ऊर्ध्वलोक का, क्योंकि इन दोनों लोकों का प्रमाण जगत श्रेणी के वर्ग से भी बहुत अधिक है। ये ख्याल में है ना क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो घने राज्यों में हमने निकाला था, 147 घने राज्य, दोनों लोकों का प्रमाण, दोनों लोक यानी ऊर्ध्व लोक अकेला लेंगे तो भी, अधोलोक अकेला लेंगे तो भी, कितना देखा था हमने कैलकुलेट करके, 147 घन राजो ऊर्ध्व लोक की बात है, यानी ये जगत श्रेणी के असंख्यात, यानी जगत श्रेणी के वर्ग से भी बहुत है। जगत श्रेणी का वर्ग कितना होता है? 49 प्रतर राजो, और ये घन राजो की बात है, यानी बहुत ज्यादा होता है। अब 33 नंबर पेज पर आए, यहां तक तो अपना विषय पहले कल परसों हुआ था, कल। अब शंकाकार पूछते हैं, त्रसकायिक पर्याप्त राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण विहार व स्वस्थान राशि का गुणकार संख्यात घनांगुल है, यह कैसे जाना जाता है? क्योंकि वो संख्यात गुणकार से गुणा किया ना, क्योंकि वो तो एवरेज निकाला होगा ना, उसकी उसी के प्रश्न है कि संख्यात गुणांगुल ये आपने कैसे निकाला। समाधान, प्रकृत में स्वयं प्रभ नगेंद्र, ये स्वयं प्रभ पर्वत कहां पर है मालूम है? देखो असंख्या द्वीप समुद्र तो मालूम है, अंतिम समुद्र का नाम क्या है? स्वयंभूरमण समुद्र। उसके पूर्ववर्ती कौन सा द्वीप है? स्वयंभूरमण द्वीप। उसके एग्जैक्ट बीचों बीच ऐसे वलयाकार एक पर्वत है, जैसे हम मानुषोत्तर पर्वत ऐसा पूरा राउंड देखते हैं ना मनुष्य क्षेत्र के बाहर, वैसे वहां स्वयंभूरमण द्वीप को दो भागों में विभाजित करने वाला वलयाकार ऐसा पूरा राउंड एक पर्वत है, उसका नाम है स्वयं प्रभव पर्वत। उसके आउटर साइड में जो द्वीप का आउटर ही बाहरी भाग है वहां कर्म भूमि है, और अंदरूनी हाफ जो है वहां तीरियन चौंकी जघन्य भोग भूमि है। यहां तक ख्याल में? तो यहां कहते हैं तीरियन चौंकी इसलिए कहते हैं कि बीच वाले सारे ही द्वीपों में तीरियन चौंकी जघन्य भोग भूमि है, वहां कोई मनुष्य होते ही नहीं है, तो लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगे क्या वहां पर मनुष्य हो सकते हैं, तो मनुष्य जीव तो मनुष्य क्षेत्र के बाहर होते ही नहीं है, और बीच में समुद्रों में कोई जलचर नहीं है, अकेले द्वीपों में ही है, इसलिए वहीं पर भोग भूमि होते हैं। ऐसे भी भोग भूमि में वो समुद्र वगैरह नहीं होते। भोग भूमि देखो फिर से पढ़ते, प्रकृत में स्वयं प्रभ नगेंद्र पर्वत के परभाग में, परभाग यानी आउटर साइड में स्थित त्रसकायिक पर्याप्त जीव राशि प्रधान है। क्यों? वहां तो लंबी आयु वाले हैं, बड़ी अवगाहना वाले और लंबी आयु वाले जीव वहां पाए जाते हैं, एक बात। और उसकी एरिया कितनी है? तो बहुत अंदर के सारे द्वीप समुद्र उसमें समा जाए इतने उसके एरिया है। तो हमें जो ढाई द्वीप में जो कुछ दिखते हैं यहाँ पर अन्य त्रस राशि द्विनिर्यादि, तो बीच वालों तो मैं कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ मेनली किसको लेना? उनकी लेनी बात। हाँ ये कह रहे हैं, यह स्वयं प्रभ नगेंद्र कौन है? पर्वत। नगेंद्र के अर्थ होता है पर्वत, नग को पर्वत को नग कहते हैं। ये स्वयं प्रभ नाम का जो पर्वत है उसके आउटर साइड में त्रसकायिक पर्याप्त जीवराशि प्रधान है। आउटर साइड में आने अकेले द्वीप में ही नहीं लेना, पूरा समुद्र भी उसमें आ गया, क्योंकि यह राशि इतर कर्म भूमि जीवों की अपेक्षा दीर्घायु और बड़ी अवगाहना वाली है। भोग भूमि में तो विकलेंद्रिय जीव नहीं होते और वहां पर पंचेंद्रिय जीव भी स्वल्प होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। भोग भूमि में पंचेंद्रिय जीव पाए जाएंगे, अपने अपने एरिया में वो विहार करेंगे, पर उनकी संख्या अल्प है, क्योंकि शुभ कर्म के उदय की अधिकता वाले बहुत जीवों का होना असंभव है, यानी मेजॉरिटी तो उसमें नहीं होगी। पापी जो ज्यादा हो गए।
विहार करने वाले जीव तिर्यंच की मुख्यता से बताया, पर देव भी विहार करते हैं।
यहाँ तो द्विंद्रियादि सारे ही विहार करने वाले हैं, पूरे त्रस राशि में वो देवों से ज्यादा होगी। द्विंद्रियों की संख्या, द्विंद्रियादिकों की संख्या पंचेंद्रियों से बहुत ज्यादा है। पंचेंद्रियों में देव सहित अन्य सभी आ गए चारों गति के, उनसे भी वो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, असंख्यात गुणा है, इसलिए उनकी मुख्यता ली यहाँ पर। देखो, स्वयं प्रभ पर्वत के परभाग में स्थित जीवों की अवगाहना सबसे बड़ी होती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह गाथा सूत्र है। गाथा पढ़ेंगे हम, वहाँ कौन कौन सी अवगाहना, बड़े बड़े जीवों का एक एक नाम बताएंगे, द्विंद्रिय की मैक्सिमम अवगाहना, तीन्द्रिय की उसका नाम भी बताएंगे। शंखो पुन बारह जो जनानि गोमि भवति को संतु बमरो जोयण मेघम मच्छो पुन जोयण सहसो। शंख नामक द्विंद्रिय जीव बारह योजन की लंबी अवगाहना वाला होता है। ये केवल यहाँ लंबाई बताई है, पूरी उसका तीन डायमेंशन नहीं बताए। तो शंखाकृति है तो उसका एरिया कैसे निकालना, उसके सूत्र है। आगे आएगी बात, हाँ फोटो में देख लो।
हाँ, यानी वहाँ पर यहाँ से अमेरिका तक से भी बड़ा शंख होगा।
बारह योजन ये तो ऑर्डिनरी योजन है,
तो क्या होगा?
और अमेरिका तक को हम ये देखेंगे वो तो महायोजन में गिनेंगे।
तो ये ऑर्डिनरी योजन है,
शरीरों की अवगाहना ऑर्डिनरी योजन में होती है।
अच्छा अच्छा अच्छा।
और द्वीप समुद्रों की जो लंबाई हम वगैरह देखते डिस्टेंस, वो महायोजनों में होता है। हाँ लंबाई, ये जो चित्र बनाए नहीं, आप चित्र देख लो, आप शुरुआत में है ना, एक चित्रों की सूची बताई है, जैसे हमने वहाँ स्वरूपाकार देखा था अधोलोक वगैरह, उसके आगे के पेज पर यहाँ बताई है। आकृति नंबर 16 उन्होंने नंबर नाम दिया है, भ्रमर है वो, शंख नीचे है आकृति नंबर 18 में, पृष्ठ 35 के लिए ये उन्होंने, उसकी एरिया कैसे निकालना उसकी बात है। और गोमी जो है वहीं पर लिखा 34 नंबर के पेज के लिए, और भ्रमर उनकी एरिया कैसे काउंट करते ना, वो तो उसके लिए उन्होंने डायमेंशंस वहां लिख दिए। हम अभी पढ़ेंगे तो डायमेंशन अभी निकालने वाले, फिर से पढ़ते इसका अर्थ। शंख नामक द्विंद्रिय जीव बारह योजन की लंबी अवगाहना वाला होता है। गोम्भी नामक तीन्द्रिय जीव तीन कोस की लंबी अवगाहना वाला होता है। माय गॉडनेस, जो हम ये गोम या जो कुछ कहते हैं ना, इसे कान खजूर, क्या कहते हैं आप लोग, हाँ वो कितना, तीन कोस लंबाई वाला
एक कोस मतलब
दो माइल का एक योजन, एक कोस चार कोस का एक योजन होता है। ये बारह योजन तो शंख है,
ये तीन कोस की लंबी अवगाहना वाला,
हाँ
तो बारह योजन हो गया।
नहीं 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 नहीं, तीन कोस, दो कोस का एक योजन, डेढ़ योजन हुआ,
दो कोस का एक योजन
यानी ये डेढ़ योजन हुआ। माइल में गिना है तो 6 माइल,
हाँ।
भ्रमर नामक चतुरिंद्रिय जीव एक योजन की लंबी अवगाहना वाला होता है। महामत्स्य नामक पंचेंद्रिय जीव 1000 योजन की लंबी अवगाहना वाला होता है। आप कहेंगे वो द्वीप में कहाँ रहता है, द्वीप नहीं, स्वयं प्रभ पर्वत के उस पार, उसमें द्वीप भी आ गया, समुद्र भी आ गया। योजनों और कोसों में कही गई इन अवगाहनों को घनांगुल प्रमाण करने पर संख्यात घनांगुल होते हैं। भले वो करोड़ों भी क्यों होने हो, वो तो संख्या थी कहलाएगी उसको, यानी अंगुलों में किया ना उसको। इसलिए विहार व स्वस्थान राशि का गुणकार संख्यात घनांगुल स्थापित किया है। शंका, स्वयं प्रभु नगेंद्र पर्वत के उस ओर जघन्य अवगाहना वाले भी जीव पाए जाते हैं, भले उत्कृष्ट हो पर वहां जघन्य भी हो गए कि नहीं हो गए? कहते नहीं, क्योंकि जघन्य अवगाहना रूप मूल अर्थात आदि और उत्कृष्ट अवगाहना रूप अंत, इन दोनों को जोड़कर आधा करने पर भी संख्यात घनांगुल देखे जाते हैं। उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहनों को छोड़कर आधा करने पर संख्यात घनांगुल कैसे आते हैं, आगे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए उन द्विंद्रियादिकों की अवगाहनाओं में से पहले भ्रमर क्षेत्र के घनफल के निकालने का विधान कहते हैं। ये उनकी घनफल कैसे कैलकुलेट करना, उसकी बात है यहाँ पर। अब हम 34 नंबर पेज पर आ गए। एक योजन लंबे, पहले बताया था ना उन्होंने, आधे योजन ऊंचे और आधे योजन की परिधि प्रमाण विष्कंभ वाले भ्रमर क्षेत्र को स्थापित करके, यानी उसकी लंबाई एक योजन है, ऊंचाई आधा योजन है और परिधि भी आधा योजन है, और उस परिधि वाला जो विष्कंभ हो वो अभी वो चित्र देख लो, विष्कंभ यानी व्यास, विष्कंभ यानी डायमीटर, रुंदी भी कहते उसको, विष्कंभ यानी चौड़ाई, गोल क्षेत्र हो तो उसको व्यास कहेंगे, आयत होगा तो उसको रुंदी जैसे कहेंगे। भ्रमर की उन्होंने बताई थी ना, एक योजन की लंबाई वाला। अब इसके कार्य बताते हैं, इस भ्रमर क्षेत्र कितना है, तो एक योजन लंबा, आधा योजन लंबा ऊंचा और आधे योजन की परिधि प्रमाण विष्कंभ वाला स्थापित करके, विष्कंभ के आधे को उत्सेद से गुणा करके जो लब्ध आवे उसे आयाम से गुणित करने पर एक योजन के 8 भागों में से 3 भाग लब्ध आते हैं, यानी 3 अष्टमांश, और यही भ्रमर क्षेत्र का घनफल है, यानी 3 अष्टमांश घन योजन। वो कैसे निकालना उसको बताते हैं। भ्रमर का आयाम एक योजन है, उत्सेद आधा योजन है, विष्कंभ आधा योजन की परिधि प्रमाण, ओ विष्कंभ आधा योजन है, ऊपर कहीं उल्टा लगता है ना, आधे योजन की परिधि प्रमाण विष्कंभ वाले, हाँ पर यहाँ आधा योजन की परिधि ऐसा उसका उल्टा अर्थ निकल रहा था। ऊपर देखो प्राकृत में क्या है, योजनद्ध परिहि विखंभम, यानी आधे योजन का विष्कंभ की जितनी परिधि हो उतना, ऐसा लेना, यानी वो तिगुणा होता ना, इसलिए डेढ़ 3 द्वितीयांश हो जाएंगे उसके योजन। विष्कंभ आधा योजन है, उसकी परिधि आधे योजन की स्थूल परिधि डेढ़ योजन होती है, क्योंकि तिगुणा होती है स्थूल, तो उससे परिधि को, हाँ, 2 से भाग दिया। ऊपर बताए ना, विष्कंभ के आधे को उससे से गुणा करके जो लब्ध आवे उससे हमारा कितना था, आधा योजन। विष्कम्भ भी आधा योजन, समझ में आती है बस, उससे भी आधा योजन है और उसका विष्कम्भ भी आधा योजन है। तो स्थूल परिधि तीन द्वितीयांश ली, उसको विष्कम्भ के आधे को उससे से गुणा करके जो लब्ध आवे उससे भी वन द्वितीयांश और विष्कम्भ भी एक द्वितीयांश, तो उसका आधा हो गया एक चतुर्थांश। तो उसका डायरेक्ट उन्होंने उत्तर बताया, तीन द्वितीयांश डिवाइडेड बाय दो, तीन चतुर्थांश आया, उसका आधा किया ना उन्होंने। तीन चतुर्थांश को आधे से फिर गुणा किया, तीन अष्टमांश आ गया। तीन अष्टमांश को एक से गुणा किया, तीन अष्टमांश आए। भ्रमर क्षेत्र का योजनों में घनफल, तीन अष्टमांश घन योजन हो गया उसको। ये योजनों में उन्होंने निकाला माप, कैसे निकाले समझ में आई बात। देखो हम यहाँ भ्रमर का घनफल निकाल रहे थे, भ्रमर की लंबाई एक योजन है, उसका उच्छेद आधा योजन है, जैसे हाइट वाइज ऐसा गोलाकार लिया, ऐसा आधा योजन और ऐसा आधा योजन, गुड। तभी हमको उसको निकालने है उसकी, तो जो गोल एरिया कितनी होगी, आधा योजन उसका डायमीटर है, तो उसकी परिधि तीन गुना होती है, तीन द्वितीयांश, तीन द्वितीयांश। अभी वो तीन द्वितीयांश वाली जो परिधि है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विष्कम्भ के चौथे भाग से ना। आपके कहने यहाँ दो से क्यों भाग दिया है ना, ऊपर बताया था। देखो विष्कम्भ के आधे को, विष्कम्भ का आधा हुआ वन चतुर्थांश, उच्छेद से गुणा करके, उच्छेद है आधा, ने एक अष्टमांश हुआ, जो लब्ध आवे उसे आयाम से गुणित करने पर वही एक अष्टमांश आ गए ना। एक योजन के आठ भागों में से तीन भाग लब्ध आते ये, और इसको हमने वो पहले जो परिधि थी उसको गुणा किया। उन्होंने दूसरी पद्धति से बताया, देखो हमेशा क्या बताए, उनका सूत्र क्या है, परिधि को भी आधा करो, परिधि के आधा करो और विष्कम्भ को आधा करो। परिधि को विष्कम्भ के चौथे भाग से गुणा करेंगे तो हमें गोल का क्षेत्रफल मिलता है, फिर उसके लंबाई से गुणा करने पर घनफल मिलता है। इसलिए उन्होंने पहले विष्कम्भ ने परिधि को आधा किया, यानी तीन द्वितीयांश को आधा किया, तीन चतुर्थांश आया। अब तीन चतुर्थांश को उन्होंने आधे से गुणा किया, तीन अष्टमांश आ गया, और उसको एक से गुणा किया, तीन अष्टमांश आ गया। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं उदाहरण जो लिखा था उसके नीचे की लाइन, वो तीन लाइन के नीचे की लाइन, भ्रमर क्षेत्र के, ये तो योजन में निकला है, हमें संख्यात अंगुल की बात चल रही थी अपनी, संख्यात घनांगुल कैसे आया उसकी बात चल रही थी। भ्रमर क्षेत्र के योजन में आए हुए घनफल के घनांगुल करने पर इस उच्छेद घन योजन में, ये जो योजना है वो उच्छेद में आया है, क्योंकि शरीर की अवगाहना उच्छेद अंगुल से कैलकुलेट किए हुए योजन में आती है, क्योंकि हमने देखा ना इतने अंगुल है उसका घनांगुल, फिर जो कितने अंगुल का एक हाथ होता है वैसे वैसे ले लेना उसमें, हमने देखा 24 अंगुल का हाथ होता है, याद है ना। चार हाथ का धनुष होता है, 2000 धनुष का कोष होता है, चार कोष का योजन होता है, उल्टा कैलकुलेट करेंगे तो एक योजन में अंगुल कितने होते हैं? योजन यानी रेगुलर योजन, और वो अंगुल यानी वो सूक्ष्म अंगुल, उच्छेद अंगुल। तो एक योजन में अंगुल कितने होते हैं? याद है कि भूल गए?
7,68,000।
एक योजन में 7,68,000 अंगुल होते हैं। अब घन योजन में कितने घन अंगुल हो गए? 3 बार उसको गुणा करना पड़ेगा, यानी एक घन योजन में 7,68,000 का घन इंटू 3 नहीं, उसी संख्या को 3 बार लिख के गुणा करो आपस में, उसका क्यूब करो। देखो यहाँ कहते भ्रमर क्षेत्र के योजन में आए हुए घनफल के घनांगुल करने पर इस उच्छेद घन योजन में आए हुए घनफल को 1536 के घन 362,38,78,656 से गुणित करने पर प्रमाण घनांगुल होते हैं। ये प्रमाण में बात निकाली उन्होंने, उसका उदाहरण भ्रमर क्षेत्र का उच्छेद घन योजन में घनफल 3/8 है। यहां तक बात ख्याल में आई? एक उच्छेद घन योजन के प्रमाण घनांगुल, देखो उसके उच्छेद घनांगुल निकालने हो तो 7,68,000 का घन करेंगे। फिर से देखो, हम जरा पाटी पर भी लिखते हैं। ये सब हम उच्छेद अंगुल और उच्छेद अंगुल से निकला हुआ योजन उसी की बात है। यहाँ क्या करना चाहते हैं? एक योजन है, एक योजन के 4 कोष होते हैं, एक कोष में 2000 धनुष होते हैं, एक एक धनुष में 4 हाथ होते हैं और एक एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। ये आप लिख के रखना, एक योजन में 4 कोष, एक एक कोष में 2000 धनुष, एक एक धनुष में 4 हाथ और एक एक हाथ में 24 अंगुल। आप लिखना बाजू में, एक योजन 4 कोष, 2000 धनुष, एक एक धनुष के 4 हाथ और एक एक हाथ के 24 अंगुल। अभी इसका सबका आपस में गुणा कर करेंगे हम। नहीं, 2000 धनुष के नहीं, एक एक धनुष के 4 हाथ। ये हमने बीच बीच में, हमने शॉर्ट में लिखा, आपको ऐसा लिखना, एक योजन इज इक्वल टू 4 कोष, एक कोष इज इक्वल टू 2000 धनुष, एक धनुष इज इक्वल टू 4 हाथ और एक हाथ इज इक्वल टू 24 अंगुल। अब देखो इसको कैलकुलेट करना है, ये सबका आपस में गुणा करेंगे तो छोटी छोटी संख्याओं को गुणा करेंगे, उसको हम 2000 से गुणा करेंगे। 4 कोष 4 हाथ, 4×16 × 24, 16 और 24 का गुणाकार होता है 384 × 2000, 768,000, 7,68,000। ख्याल में आई बात? एक योजन इज इक्वल टू 7,68,000 अंगुल। यहां तक बात ख्याल में आई? हम ऐसा लिखेंगे, एक योजन इज इक्वल टू 7,68,000 अंगुल। अगर हम योजन का घन करेंगे तो उसका भी घन करना पड़ेगा, 7,768,000। हाँ, 7,68,000 कैसे निकाला आपको बताया ना, एक योजन में 7,68,000 768,000 अंगुल होते हैं। अब एक योजन में इतने होते हैं,
तो प्रमाण योजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रमाण योजन 500 गुना बड़ा है, तो इसको अगर हम 500 से भाग देते हैं तो ये प्रमाण योजन हो जाएगा। सात सौ अड़सठ हजार है ना, उसको 500 का भाग दे दो, दो जीरो निकल जाएंगे। नहीं, अगर प्रमाण योजन के ऑर्डिनरी योजन करना होता तो गुणा करते, ऑर्डिनरी योजनों का प्रमाण योजन करना है तो भाग देंगे। नहीं, मैंने ये बोला कि प्रमाण योजन जो है वो ऑर्डिनरी से 500 गुणा है, हम तो 500 ऑर्डिनरी योजनों का एक प्रमाण योजन होगा, तो इतने ऑर्डिनरी योजनों का कितने हो गए, तो 500 से भाग देना पड़ेगा ना। फिर से 500 ऑर्डिनरी योजनों का एक प्रमाण योजन, तो 7,68,000 ऑर्डिनरी योजनों के कितने प्रमाण योजन हो गए, क्या करना पड़ेगा? 500 से भाग देना पड़ेगा, तो 7,68,000 डिवाइडेड बाय 500, ऊपर के दो जीरो निकाल दो और 5 से उसको भाग दो, 5 एक 5 दो रह गए, 5 5 25 एक रह गया, 5 3 15 3 रह गए, 5 37 1536 प्रमाण, यानी एक ऑर्डिनरी योजन में 1536 प्रमाण अंगुल होते, प्रमाण अंगुल होते।
तो ये प्रमाण योजन का माप है ये।
हाँ, ये 500 से भाग देने पर प्रमाण की बात आ गई, तब तक हम ऑर्डिनरी की बात करते थे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट यहाँ 1536 कैसे नहीं, एक ऑर्डिनरी योजन में 1536 प्रमाण घन प्रमाण अंगुल होते हैं, सॉरी प्रमाण अंगुल होते। आपने ठीक लिखा कि नहीं, बराबर उल्टा सुल्टा लिखा? एक ऑर्डिनरी योजन में 1536 प्रमाण अंगुल होते, ऑर्डिनरी योजन में ऑर्डिनरी अंगुल कितने होते, तो 7,68,000। एक ऑर्डिनरी योजन में 7,68,000 ऑर्डिनरी अंगुल होते हैं, बराबर यहां तक ख्याल में? अभी हमको वो प्रमाण अंगुलों में निकालना है, तो ऑर्डिनरी अंगुल और प्रमाण अंगुल इसमें कितने का डिफरेंस है, अभी योजन की बात छोड़ दो, 500 का है, 500 गुना वाला डिफरेंस है, ऑर्डिनरी अंगुलों के प्रमाण अंगुल करना है, तो 500 से भाग दिया, भाग दिया तो संख्या कितनी आएगी, 1536 आ गए। यानी अभी हमारे पास स्टेटमेंट कैसा है, एक ऑर्डिनरी योजन में 1536 प्रमाण अंगुल होते हैं, तो ऑर्डिनरी घन योजन में कितने हो गए, 1536 का घन होगा, घन होगा, बस घन इसने लिखो ना, उसके ऊपर रेस टू 3 लिख दो, यानी एक जो हमने ना ऑर्डिनरी उसको उच्छेद घन योजन कहते हैं, उच्छेद अंगुल से निकला हुआ जो योजन है जिसको हम ऑर्डिनरी योजन कह रहे हैं, उसी का नाम है उच्छेद घन योजन। एक उच्छेद घन योजन में 1536 प्रमाण घनांगुल होते हैं, यहां तक बात ख्याल में आई? अभी जहां 34 पेज पर तीसरा पैराग्राफ, हाँ प्रमाण घनांगुल 1536 का घन, ये प्रमाण घनांगुल हुए। देखो तीसरा पैराग्राफ फिर पढ़ते हैं, भ्रमर क्षेत्र के योजन में आए हुए घनफल के, 3/8 घन योजन हमारा उत्तर आया था, याद है ना? घनांगुल करने पर, ये घनांगुल करना है तो ये तो कौन से घन, प्रमाण घनांगुल करना है, तो इस उच्छेद घन योजन में आए हुए घनफल को, वो घन योजन के है, एक उच्छेद घन योजन के 1536 का घन, ये प्रमाण घनांगुल हो गए, उस घनफल को 1536 के घन समझ में ना, 1536 कहाँ से निकाला, उसका घन करना है 1536 गुना 1536 गुना 1536 करना, वो कितना आता है 362 करोड़। एक के आगे एक लिखो, 362 करोड़। वो नीचे उदाहरण में उसके संख्या लिखी है, 38,78,656 से गुणित करने पर प्रमाण घनांगुल होते हैं, क्योंकि एक घन योजन में इतने, सॉरी एक ऑर्डिनरी घन योजन में 1536 के घन प्रमाण प्रमाण घनांगुल होते हैं, तो 3 अष्टमांश में कितने हो गए? 3 अष्टमांश को उससे गुणा करेंगे। नीचे के उदाहरण में लिखा है, देखो, भ्रमर क्षेत्र का उच्छेद घन योजन में घनफल 3 अष्टमांश है। एक उच्छेद घन योजन के प्रमाण घनांगुल 1536 का घन है, उसका प्रमाण 362,38,78,656 है, उसका गुणा किया तो कितना आ गया, वो 135 करोड़ 89,54,496 प्रमाण घनांगुलों में भ्रमर क्षेत्र का घनफल है। ये प्रमाण में बताया उन्होंने, प्रमाण घनांगुल निकाल इतना। हाँ, प्रमाण घनांगुल निकाला, इसको संख्यात घनांगुल कहा। हमें संख्यात घनांगुल 2, 4, 5 होगा ऐसा लगता है, और भी वो भी ऑर्डिनरी घनांगुल नहीं है, ये प्रमाण वाला है, इसी का विशेषार्थ बता रहे हैं। एक उच्छेद योजन में 7,68,000 उच्छेद सूचंगुल होते हैं, जिसको हम उच्छेद अंगुल कहते हैं, अंगुल कहो या सूचंगुल कहो एक ही बात है। इस नियम से एक उच्छेद घन योजन के घनांगुल करने पर उसमें 7,68,000 को 3 बार रखकर परस्पर गुणा करने से जितना लब्ध आएगा उतने उच्छेद घनांगुल होंगे। उच्छेद योजन से प्रमाण योजन 500 गुना बड़ा होता है, यानी 500 गुना होता है, अतएव इन उच्छेद घनांगुलों के प्रमाण घनांगुल करने के लिए उक्त अंगुलों के प्रमाण में 500 के घन का भाग देने पर, वो तो अभी हमने जो देखे 362,38,78,656 घनांगुल आ जाते हैं, और वह राशि 1536 के घन प्रमाण पड़ती है। हम उसको हिसाब करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट 1536 3 लिखेंगे, तो इतने विस्तार से लिखने की जरूरत भी नहीं। ये तो हो गया अपना भ्रमर हो गया। अब गोम्भी का आयाम उच्छेद योजन के 4 भागों में से 3 भाग प्रमाण है, यानी 3/4। विष्कम्भ उच्छेद के 8वें भाग प्रमाण है, और बाहल्य विष्कम्भ से आधा है। आयाम है उसकी लंबाई, 3/4 योजन पहले हमने देखे थे ना, अब देखो अभी हमने गोमी के यहाँ लिखा है। हाँ, बाहल्य ने उसकी चौड़ाई, यहाँ लिखा था गोमी नामक तीन जो 3 कोस की लंबी अवगाहना वाला है। 3 कोस का अर्थ क्या, 3/4 योजन। ये यहाँ कैसे लिया, 4 में से 3 भाग, उसका अर्थ ये है। तो उच्छेद योजन के 4 भागों में से 3 भाग प्रमाण है। हाँ, गोमी यानी वो तो गोम उसका चित्र दिखा दिया है शुरुआत में। हाँ, चौड़ाई उसका विष्कम्भ है, वो उच्छेद के 8वें भाग प्रमाण है। उच्छेद
के
नहीं 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 उच्छेद के आठवें भाग, ये गलत ट्रांसलेशन हुआ है। विष्कम्भ है वो आयाम के आठवें भाग प्रमाण, मैं वही सोच रही है ऐसा कैसा हो रहा है, उच्छेद दिया ही नहीं हमने, पहले करेक्शन किया है ना, तद अष्ट भागो विकम्भ उसके, उसके अष्ट भाग में विष्कम्भ उसके आठवें भाग करो, उच्छेद के मत करो उसके करो, हाँ उसके यानी आयाम के। मूल प्राकृत में क्या है देखो, गोम्य आयाम कितना है, उच्छेद योजन है तिन्नी चौब भागो, तीन चतुर्थांश योजन है, उच्छेद योजन है ये, उच्छेद और ये उच्छेद उन्होंने गलती कर दी। उच्छेद का एक अर्थ हाइट भी होता है ना, विष्कम्भ है वो उसके, उसके का अर्थ क्या है आयाम के। आठवें भाग प्रमाण है, आठवां भाग उसका आठवां भाग, आयाम कितना था तीन चतुर्थांश, उसका आठवां भाग तीन चतुर्थांश का आठवां भाग तीन बत्तीसांश, यानी ये तीन चतुर्थांश योजन था, उसका आठवां भाग यानी तीन बत्तीसांश योजन हो गया। समझ में आया शोभा कहाँ करेक्शन करना है शोभा? नहीं लिख सको परंतु समझो तो सही, विष्कम्भ है वो आयाम का आठवां भाग प्रमाण है, आयाम बताया उन्होंने, और बाहल्य हाँ गुणा एवं एक अष्टमांश, तीन चतुर्थांश गुणा एक अष्टमांश, यानी उस एक अष्टमांश से गुणा करा, यानी क्या किया आठ से भाग दिया, तीन बत्तीसांश हो गया। और बाहल्य विष्कम्भ से आधा है, बाहल्य ने अभी उसकी ऐसी मोटाई, ये चौड़ाई ली विष्कम्भ और ये मोटाई, जैसे गोम का आकार इमेजिन करो ना आप, उसका ऐसा थिकनेस और ऐसी चौड़ाई, विष्कम्भ से भी आधा यानी तीन, तीन चौसठांश हो जाएगा, हाँ मोटाई मोटाई विष्कम्भ ने चौड़ाई। देखो ये पेन है आपका, ये पेंसिल है कुछ भी ले लो, ये उसका आयाम है लंबाई, अब ये तो गोलाकार इक्वल है, इसका विष्कम्भ और बाहल्य इक्वल है, ऐसा नहीं ऐसा चपटा ले लो कोई, ये तो पट्टी जो है ये उसकी लंबाई है, ये उसका विष्कम्भ है और ये उसका बाहल्य, बाहल्य ने उसकी मोटाई भी ले ली, मोटाई चौड़ाई। देखो तीन चतुर्थांश का आठवां भाग तीन बत्तीसांश हुआ, और तीन बत्तीसांश का आधा तीन चौसठांश हुआ, यहाँ तक ख्याल में आई बात? अब इन तीनों का आपस में गुणा करने से घनफल मिलेगा, गोम्य क्षेत्र का घनफल लाने के लिए इन तीनों के परस्पर गुणित करने पर उच्छेद योजन के घन का संख्यात्वा भाग लब्ध आता है। यानी इतने घन योजन आता है, 1536 के घन से गुणित करने पर गोम्य के घन रूप क्षेत्र के प्रमाण घनांगुल आ जाते हैं, ये अंगुलों में बात आएगी, इसी को उन्होंने बता के सॉल्व करके बताया है। गोम्य का आयाम तीन चतुर्थांश योजन, विष्कम्भ उसके आठवें भाग प्रमाण यानी तीन बत्तीसांश योजन, बाहल्य उसका भी आधा तीन चौसठांश योजन। अब तीन चतुर्थांश गुना तीन बत्तीसांश, उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप किया, तीनों एक साथ नहीं लिखे आपस में गुणाकार, तीन त्रिक नौ डिवाइडेड बाय 32 गुना 4 बटे 128, 9 बटे 128 को 3 बटे 64 से गुणा किया तो 27 बटे 8192 आ गया, 8192 है ना। ये क्या है? घन योजन। ये कौन से घन योजन है? उच्छेद घन योजन है। ये गोम्य क्षेत्र का घनफल आया, जैसे हमने पहले उसको 1536 के घन से गुणा करना है उसको, तो 27 बटे 8192 को 362,38,78,656 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा? 1,19,43,936, बराबर है ना? वो भाग दिया ना हमने 192 प्रमाण घनांगुलों में गोमिक क्षेत्र का घनफल आता है, यानी वो संख्या घनांगुल होगा कि नहीं हुआ ये कहना चाहते हैं। केवल घन योजन में ऑर्डिनरी में बताना है तो 27/81,192 हो जाता है। अब शंख का क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे। 12 योजन आयाम वाले ने लंबाई वाले और 4 योजन मुख वाले, मुख यानी उसके एक टेपरिंग होता है वो एक बाजू, शंख क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। उसके लिए ऊपर गाथा है, व्यासं तावत् कृत्वा वदनोदलोनं मुखार्धवर्गयुतं द्विगुणं चतुर्विभक्तं सनाभिकेस्मिन् गणितमाहु। व्यास को उतनी ही बार करके, अर्थात व्यास का जितना प्रमाण है उतनी बार व्यास को रखकर जोड़ने पर जो लब्ध आवे उसमें से मुख के आधे प्रमाण को घटाने पर, मुख तो 4 योजन वाला देखा था, मुख के आधे प्रमाण के वर्ग को जोड़ दे, यानी वो शंख का क्षेत्रफल निकालने की डायरेक्ट पद्धति बता रहे। इस प्रकार जो संख्या आवे उसे द्विगुणित करके पश्चात 4 का भाग दे, इस प्रकार जो लब्ध आवे उसे शंख का क्षेत्रफल कहते हैं।
ये जो लास्ट सेंटेंस है, इस प्रकार जो संख्या आवे उसे द्विगुणित करके पश्चात 4 का भाग दे,
हाँ।
उससे डायरेक्ट तो उसको 2 का भाग देवे तो उतना ही होगा ना?
देखो देखो कैसे है, देखो व्यास को उतनी ही बार करके, अर्थात व्यास का जितना प्रमाण हो उतनी बार व्यास को रखकर जोड़ने पर,
वो बात नहीं पूछ रहा हूँ, उसकी लास्ट 2 लाइन्स। अभी वो जो संख्या आई उसे द्विगुणित करना और पश्चात
2 गुणा करना, फिर 4 का भाग देना,
तो उससे पहले से आधा कर,
आधा करना। नीचे त्रिलोक परिणति में हमने ये सब निकाल लिया था ना, नीचे के 3 नंबर की फुटनोट देखो, देखो दो नंबर की भी देखने पड़ेगी। वैसे एक नंबर कहाँ दिया है? बाहल्लम विखम बद्धम बाहल्लम,
दो नंबर
ये तो गोमी का जो आयाम है वो तो आसानी से हमने देखा था। अभी 2 नंबर में देखो,
अभी 3 नंबर,
हाँ 2 नंबर। आयाम कदी मुहदल हीना, आयाम कदी यानी आयाम का वर्ग करो, मुहदल हीना मुखदल को हीन करके, हाँ माइनस करना, मुहवास अर्ध वग्ग जुदा, मुख का जो व्यास है उसको अर्ध करके उसके वर्ग को मिला देना, बिगुणा वेहेन हदा 2 गुणा करके और उसे भाग देके, संखावत्तस क्षेत्रफलम, संखावत्त ने वो शंख का क्षेत्रफल आता है। नीचे की भी फुटनोट देखते हैं, 3 नंबर की, फिर हम अपने गणित पर जाएंगे। स्वयं पहाचल परभाग ठिय खेते, स्वयं प्रभ पर्वत के परभाग में रहने वाले उत्पन्न द्विइंद्रियस्य उत्कर्ष उगाहना, वहाँ उत्पन्न होने वाले द्विइंद्रिय आदि की उत्कृष्ट उगाहना होती है। द्विइंद्रिय की कितनी है? 12 योजन आयाम, 12 योजन आयाम है, 14 योजन मुह, 4 योजन मुख है, शंख ऐसे शंख का क्षेत्रफलम, व्यासम तावत् कृत्वा व्यास को उतना ही करके वदन दलोनम, वदन यानी मुख का आधा करके उसको माइनस करना, वदन दलोनम उसको माइनस करो, मुखार्ध वर्ग युतम मुख के अर्ध का वर्ग करना, द्विगुणम दो गुना करना, चतुर्विभक्तम। हाँ यही बात वही अभी जो हमने ऊपर भी देखी ना, द्विगुणम चतुर्विभक्तम सनाभिकेश में गणितम आहू, ये बात वही से लिए। एदेन सुत्तेन खेत फलम आणिदे तेहत्तरी उत्सेह योजनानी भवंती, तेहत्तर उत्सेह योजन होते हैं। आयाम ए मुहम सोहिय पुनर्वि आयाम सहिद मुहमजियम बाहल्लम नायवम संखायार ठिदे क्षेत्रे, यानी आयाम में मुख को अधिक करके आयाम सहित मुह भजियम चाहिए ना, आयाम सहित मुहम बाहल्लम नायोगम संखायार ठिदे क्षेत्रे, एदन सुत्ते न बाहल्लम आणिदे पंच योजन प्रमाणम होगी, यानी बाहल्य उसके पांच योजन प्रमाण होता है। पूर्व माणिद तेहत्तरी भूद खेत फलम पंच योजन बहल्य न गुणिदे घन योजनानी तीन सय पन्नठी होती, 365 घन योजन होते हैं। पहले जो हमने निकाला तो केवल उसका आयाम निकाला, यानी वो तो क्षेत्रफल को ये बाहल्य से गुणा किया। एदम घन प्रमाण अंगुलादि कदे, अभी उसके घन प्रमाण अंगुल करने पर अमुक अमुक कितने होते ये बात बताइए, अपने गणित पर फिर जाते हैं। देखो फिर से व्यास को उतनी बार करके, 12 हमारा व्यास है, उसको उतनी बार करना ने 12 × 12 144 हो गए, अर्थात व्यास का जितना प्रमाण है उतनी बार व्यास को रखकर जोड़ने पर, 12 × 12 को रखकर जोड़ना है, 12 × 12 करना 144, जो लब्ध आवे उसमें से मुख के आधे प्रमाण को घटाकर, मुख हमारा 4 है, 4 का आधा होता है 2, उसमें से 2 घटाकर 142 हो जाता है, 144 माइनस 2 मुख के आधे प्रमाण के वर्ग को जोड़ दे, 2 माइनस किया ना 142 आ गए। अभी 142 में क्या जोड़ना है, मुख का आधा, मुख 4 है उसका आधा 2, उसका वर्ग है 4, 2 माइनस किए 4 जोड़ दिए, 146 आ गए। इस प्रकार जो संख्या आवे 146 आती है उसे द्विगुणित करके पश्चात 4 का भाग दो, यानी 146 को 2 गुणा करो और 4 का भाग दो, यानी उसका आधा करो ना डायरेक्ट, तो कितना आ गया 73 आ गया, 146 का आधा, यानी 140 का। इस प्रकार जो लब्ध आवे उसे शंख का क्षेत्रफल कहते, ये तो क्षेत्रफल है, उसको विष्कम्भ से अभी और गुणा करना पड़ेगा। इस सूत्र से लाकर उस क्षेत्रफल को मुख से हीन उच्छेद सहित उच्छेद के चौथे भाग से गुणित करके, क्योंकि गोल क्षेत्र को व्यास के चौथे भाग से गुणा करेंगे तो उसका घनफल आता है, तो कहते हैं इस क्षेत्रफल को मुख से हीन उच्छेद सहित उच्छेद के चौथे भाग से गुणित करके। हाँ हाँ बोलो बोलो, प्रश्न है क्या आपका शोभा? हेलो शोभा, गया उच्छेद घन योजन लाकर, ये तो उच्छेद घन योजन तक आ गई बात। पूर्वोक्त तो गुणकार से गुणित करने पर घनरूप शंख क्षेत्र के प्रमाण घनांगुल हो जाते हैं, इसी बात को भी उदाहरण में बताएंगे यहाँ पर। ये समझ में नीचे के पैराग्राफ का अर्थ समझ में आया? देखो पेज नंबर 35 पर नीचे का पैराग्राफ फिर बताते, 73 तक निकाला ना हमने, अब इस सूत्र से लाकर, अब ये जो क्षेत्रफल निकाला है 73, उस क्षेत्रफल को मुख से हीन उच्छेद, मुख से हीन हमारा उच्छेद कितना है 12, उसमें से मुख 4 को माइनस करेंगे तो 8 आता है, ये 12 - 4 = 8। फिर कहते उच्छेद सहित 12 में 8 को मिलाएंगे तो उच्छेद सहित 20 आ जाते हैं। जरा स्लोली करो, हम जो पढ़ रहे हैं उसको लोगों को समझने दो, इसलिए मैं फिर दोबारा स्लोली जा रही हूँ। आपने पहले बार पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए आप फटफट बोल देंगे तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो पहले हमने सूत्र से 73 लाया, उस क्षेत्रफल को अभी क्या क्या करना है, अभी मुख से हीन, किसमें से मुख को हीन करना, उच्छेद में से, 12 - 4 = 8 आ गए, उच्छेद सहित 12 + 8 = 20 आते हैं, उच्छेद के चौथे भाग से गुणित करके, उच्छेद का चौथा भाग है यानी 12 सहित, देखो उच्छेद सहित उच्छेद का चौथा भाग, उच्छेद सहित उच्छेद कितना हुआ, देखो मुख से हीन हो गया, मुख से हीन जो 8 है और 8 सहित उच्छेद, फिर से उच्छेद हमारा 12 है, मुख से हीन उच्छेद कितना हुआ 8 हुआ, मुख से हीन उच्छेद जो 8 है उसमें उच्छेद में मिला देना 8 मिला देना तो 20 हो गया। अब उस 20 का चौथा भाग 5 आ गया, 20 का चौथा भाग 5 आ गया, अब इस 5 से गुणित करना, किसको करना, क्षेत्रफल को यानी 73 को, यानी 73 को 5 से गुणा करना, 73 × 5, इस ये घन योजन में उत्तर आ जाएगा। उच्छेद घन योजन यानी वो कितना है, 5 × 15 एक रहेंगे, 15 × 25 = 36, 365 घन योजन, ये ऑर्डिनरी घन योजन आ गए। अब उसको हमको प्रमाण घनांगुल में करना है तो 1536 के घन से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए कहते पूर्वोक्त गुणकार से गुणित करने पर घन रूप शंख क्षेत्र के प्रमाण घनांगुल हो जाते हैं। यहाँ तक बात ख्याल में आई? देखो अभी हम 36 पेज पर आते हैं, यही उदाहरण करके बताया है। शंख क्षेत्र का आयाम 12 योजन है और मुख 4 योजन है, 12 × 12 = 144 हो गए, उसमें से मुख का आधा यानी 4/2 यानी 2 माइनस कर दिए तो 142 आ गए, 142 को वो जो मुख के आधे का वर्ग, 4 का आधा 2 है, 2 का वर्ग 4 होता है, 142 में वो 4 मिला देंगे तो 142 + 4 = 146 हो जाते हैं। अब ये 146 को 2 गुना किया और 4 से भाग दिया, अपनी भाषा में आधा ही कर दिया ना, पहले 2 गुना करो फिर 4 से भाग दो तो आधा हो गया, 73 आ गए। तो ये कैसे कैसे किया, 12 में से 4 किया तो 8 आ गए, 12 + 8 किए तो 20 आ गए, 20 को 4 से भाग दिया तो बाहल्य आया। ये बाहल्य निकालने के लिए अभी हमने जो फुट नोट पढ़ी थी ना, उसी में ये सब बात आई थी। देखो फुट नोट फिर देखते हैं, आपने पहले पढ़ी थी, दोबारा दिखाते हैं। 35 पेज की फुट नोट नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 लाइन, 5वीं लाइन, एदेन सुत्तेन खेत्तफलम आनिदे 73 उत्सेह योजनानि भवन्ति, मिला ना 35 पेज पर फुट नोट, ये पढ़ी हुई फिर पढ़ रही हूँ, यानी इस सूत्र से क्षेत्रफल लाने पर 73 उत्सेह योजन आते हैं। यहाँ तक बात हमारी हुई थी, आगे उसको 5 का प्रमाण कैसे निकाला बाहल्य का उसकी बात है। आयामे मुहम सोहिय पुनरपि, यानी आयाम में से मुंह को माइनस किया 8 आ गए, पुनरपि फिर क्या किया, आयाम सहित मुहम अजियम, यानी आयाम सहित मुंह को ये हाँ वो उसमें ऐड करना, जो आठ आए थे उसमें ऐड करना 20 आ गए। बाहलम और फिर आयाम सहित किया। देखो पहले आयाम को माइनस किया, आठ आ गए, वो उसी में 12 में मिला दे तो 20 आ गए, और फिर आयाम सहित किया ना, मुह भजियम चाहिए, मुह ने चार से भाग दिया, बाहल्यम नायवम, बाहल्य आ जाता है। ये तो हमने पढ़ा था मूल में, वही उसी की बात फुटनोट में दी है। अभी अपने पेज नंबर 36 पर आना। फिर तो 73 को 5 से गुणा किया, मिला ऊपर से चौथी लाइन में लास्ट में 365 उच्छेद घन योजनों में ये घनफल मिला, शंख का घनफल मिला। ये 365 तो घन योजन जो है हमारे, तो ऑर्डिनरी है, इसको प्रमाण अंगुल में करना है तो 1536 के घन से गुणा करना, उसको उन्होंने डायरेक्ट बताया संख्या में। ये जो संख्या है वो क्या है, 1536 के घन है। उसका उत्तर कितना मिला 365 से इससे गुणा करने पर, 1322 करोड़ हो गए, 71,57,000 नहीं 70,000 नहीं नहीं 13,200 देखो 9,440 होते हैं ना, 57 तो करोड़ हो गए नहीं लाख हो गए, 57 लाख हुए, 71 करोड़ हो गए, और 1,352 अबज हो गए। देखो 1,322 अबज होते हैं और 71 करोड़ हुए, समझ में आई ना बात। तेरह हजार बाईस तो अबज हुए, 71 करोड़ हुए। 1,322 के बाद एक कॉमा लगा और इतने अबज, 71 करोड़, 57 लाख, 9,440 प्रमाण घनांगुलों में शंख क्षेत्र का घनफल है, यानी इसको भी संख्यात घनांगुल कह रहे हैं। इसलिए वो प्रमाण घनांगुल में बात की, ऑर्डिनरी घनांगुल तो और कितने हो जाते हैं, 1536 के बदले 7,68,000 के घन से उसको गुणा करना पड़ता। यहाँ तक हो गई बात, अभी आगे बढ़ेंगे। अब महामत्स्य की बात निकालेंगे, 1000 योजन आयाम, 500 योजन उच्छेद, और उच्छेद के आधे अर्थात 250 योजन विस्तार वाले महामत्स्य का क्षेत्र भी घनफल रूप करने पर संख्यात प्रमाण घनांगुल होता है। ये प्रमाण घनांगुल शब्द डाला उन्होंने। प्रमाण घनांगुलानी होती। देखो उदाहरण, महामत्स्य का आयाम 1000 योजन, ये तो गुणा करेंगे, वो तो आसान है ना, तीन डायमेंशन को गुणा करना आपस में। ऑर्डिनरी है क्योंकि देह की लंबाई वगैरह वो ऑर्डिनरी योजन, 500 योजन उसका उच्छेद है और विष्कम्भ 250 योजन, योजन लिखना रह गया है, तो 1000 × 500 5 लाख हो गए, उसको 250 से गुना करना तो 12.5 करोड़ घन योजन आ गए। योजनों में घनफल लिखा है ना, उसी का अर्थ है घन योजन। उन्होंने शब्द से अदर योजनों में घनफल का ही अर्थ है, ये घन योजन की बात। अब इसके घन योजन है और उसके प्रमाण अंगुल करना, घनांगुल, प्रमाण घनांगुल 1536 के घन से उसको गुणा करना है, तो वही 362 करोड़ से वो गुणा किया तो कितना है देखो, अभी ये 4529 के बाद एक कॉमा लगा लो, कोड़ा कोड़ी, अभी कितने कोड़ी लिखना है, 84,83,200 कोड़ी, समझ में आती बात, इसको कैसे पढ़ेंगे, 4529 कोड़ा कोड़ी, 84,83,200 कोड़ी प्रमाण, करोड़ ने ऊपर 7 जीरो उसमें आ गए करोड़, इतने घनांगुलों में महामत्स्य का घनफल है, ये प्रमाण घनांगुल हो गए, कितना बड़ा है, क्योंकि हम योजना में कहते थे 12.5 करोड़, अभी उसके अंगुल बनाए, इस प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना रूप से आए हुए इन प्रमाण घनांगुलों में, ये प्रमाण घनांगुल उत्कृष्ट अवगाहना वाले प्रमाण घनांगुल आ गए, घनांगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना को प्रक्षिप्त करके, ये ऑर्डिनरी घनांगुल का संख्यात भाग, क्योंकि जघन्य अवगाहना है, उत्कृष्ट और जघन्य एवरेज निकालेंगे हम, जो जोड़ हो उसे आधे से छिन्न करने पर भी संख्यात प्रमाण घनांगुल ही रहते हैं, यानी जो अभी हमने निकाले संख्यात घनांगुलों में संख्या निकाली थी, अब उसमें ऑर्डिनरी घनांगुल का संख्यात भाग या अवगाहना उसमें जोड़ दी, ये ऑर्डिनरी वाली, फिर भी उसकी कितनी होगी, उसके आधे प्रमाण, हाँ संख्यात प्रमाण घनांगुल प्रमाण एवरेज, क्योंकि उत्कृष्ट अवगाहना वाले तो वहां तो जीवों की संख्या ज्यादा है, एरिया भी बड़ो बहुत बड़ी है, और यहाँ यहाँ तो कर्म भूमि वाले इनकी लेना है, द्विंद्रियादि की लेना था, तो ये क्या सिद्ध किया उन्होंने कि संख्यात प्रमाण घनांगुल एवरेज अवगाहना आ गई। दूसरी बात यह है कि विहारवत से बात चल रही थी अपनी, विहारवत स्वस्थान में तिर्यंचों के क्षेत्र की प्रधानता नहीं है, किंतु देव क्षेत्र की ही प्रधानता है, क्योंकि प्रत्रांगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण मुख्य रूप से अर्थात विष्कंबर उच्छेद रूप से विहार करने वाले देवों की संख्यात हजार योजन प्रमाण अवगाहना में घनफल रूप से संख्यात घनांगुल पाए जाते हैं, इसलिए विहार व स्वस्थान राशि को संख्यात घनांगुल रूप अवगाहना से गुणित करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, अभी देवों की प्रधानता है इसलिए उसको उसके अवगाहना से गुणित करेंगे, विहार करने वाले जीवों की संख्या को देवों की प्रधानता है तो उनके अवगाहना से गुणित करेंगे, तो उनकी अवगाहना कैसी है, प्रत्रांगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण मुख है, मुख रूप से ही अर्थात विष्कंबर उच्छेद रूप से विहार करने वाले देवों की संख्यात हजार योजन प्रमाण अवगाहना में घनफल रूप से संख्यात घनांगुल पाए जाते हैं।
संख्यात योजन क्यों
वो बिहार की एरिया ली होगी,
देख
और नीचे बनी है तो कितने तो यंत्रा होगी की होगी ना, वो तो धनुष में होती है। देखो दूसरी बात यह है, ये तो हो गया ना, फुटनोट जरा पढ़ते तो आपकी प्रश्न का उत्तर आया। स्वयं पहाचर परभाग ठिय खेते उपन्न समुच्छिन महामच्छस सवुक्कस उगाना, ये समझ में आती है बात इसकी। स्वयं प्रभ पर्वत के परभाग में स्थित क्षेत्र में उत्पन्न हुए समूर्छन महामत्स्य की सर्वोत्कृष्ट उगाहना होती है। उत्से योजनेन एक सहस्र या आयामम, 1000 योजन उसका आयाम है। पंचशत विक्खम्बम, 500 उसका विष्कम्भ है। तदद्ध उत्सेहम और उसके आधे प्रमाण, एक विष्कम्भ और एक उत्सेद बताए। तम प्रमाणांगुल एक कीरमाने, उसके प्रमाणांगुल करने पर 4000, अभी हमने ऊपर बताया था ना, पंचशय एवं 30 कोड़ियो, देखो अभी हमने देखो 4529 कोड़ियो चूल सीधी लख 84,00,000 तेसीदी सहस्र 83,000 दूसय कोड़ी रूवे ही। गुणित उसको उससे गुणित करने पर प्रमाण गणंगुलानी भवंती तम छेदम, वो उसकी संख्या बताई जो ऊपर हमने देखी थी। बराबर बराबर, उसे उसको गुणा किया था। शंका, असंख्यात योजन प्रमाण विहार करने वाले भी देव होते, यहाँ क्या क्या उन्होंने क्या लिखा था अभी, तो उसका विष्कम्बर उच्छेद लिया और संख्यात हजार योजन प्रमाण विहार करते हैं ऐसा लिखा था, यानी उसको संख्यात हजार योजन से गुणा किया था। इस पर प्रश्नकार का प्रश्न ये है, अरे वो तो असंख्यात योजन भी विहार करते हैं, समझ में आई बात, विहार के एरिया ली वो संख्यात हजार योजन, इसलिए शंकाकार की शंका है असंख्यात योजन प्रमाण विहार करने वाले भी देव होते, क्योंकि तीसरे नरक तक जाते तो असंख्यात योजन हो जाते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि असंख्यात योजन प्रमाण विहार करने वाले देव सर्व देव राशि के असंख्यात वे भाग मात्र है, अतः उनकी यहाँ पर प्रधानता नहीं है। कोई ना कोई कभी ना कभी करता है, परंतु एक समय में करने वाले वो जीव देव राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण उनकी मुख्यता नहीं है। तो यह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान, मिथ्या दृष्टि विहारवत स्वस्थान राशि, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है उसमें जो विहारवत स्वस्थान वाली जो राशि है वो तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है। इस प्रकार के व्याख्यान से उक्त बात जानी जाती है। उस पर शंका है, पढ़ना है क्या, दो वाक्य पढ़ते। मिथ्या दृष्टि विहार व स्वस्थान राशि के रहने का क्षेत्र तिर्यक लोक के संख्यात विभाग मात्र कैसे है, हाँ अभी है 4-5 मिनट है। समाधान, 1,00,000 योजन में सात का भाग देने से जितने सुचंगुल लब्ध आवे तत्प्रमाण बाहुल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण तिर्यक लोक है। एक लाख योजन का उन्होंने 7 बार भाग किया,
एक लाख योजन का 7 बार भाग,
हो कैसे कैसे लिया, क्योंकि एक लाख योजन का हाइट है।
हाँ, पर ऐसा एक राजू और सात राजू है ना,
जगत प्रसंग
पूर्व पश्चिम में, तो पूर्व पश्चिम में एक राजू है और ऐसा दक्षिणोत्तर सात है, सात है, मतलब पूरे में तो वो नहीं रह रहे ना। जगत प्रतर कवा देखो, तिर्यक लोग एक राजू इंटू सात राजू है इंटू एक लाख योजन है, एक राजू इंटू सात राजू इंटू एक लाख योजन, एक राजू के बदले सात राजू करो, सात का सातवां भाग, उसके जगत प्रतर करने। अभी ये कल बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बताती हूँ। तिर्यक लोक की एरिया कितनी है, एक राजू इंटू सात राजू इंटू एक लाख योजन, एक लाख हाइट तिर्यक लोक की, तो ये हमको उसका घनफल मिलेगा। अब इसको प्रतर में करना है, एक राजू के बदले सात राजू लिखो तो भागे ले सात करो, तो साथ ही साथ ही कौन बना है 49, ये जगत प्रतर कहते हैं, जगत प्रतर का सातवां भाग, यानी वो एक लाख का सातवां भाग करके जगत प्रतर को भाग दो, एक ही बात है ना। पहले हमने क्या किया, एक इंटू सात इंटू एक इंटू सात किया, यानी सात क्या हुए,
सात राजू हुए,
सात प्रतर राजू हुए, सात इंटू सात क्यों, यहाँ तो एक था, एक इंटू सात क्या हुए, प्रतर राजू हुए, सात प्रतर राजू हुए, जगत प्रतर करने के लिए 49 राजू लगते, प्रतर राजू, इसलिए उसको क्या किया हमने, यहाँ सात से गुणा करो तो प्रतर हो गए, और यहाँ सात से भाग दो, जगत प्रतर का इसमें लाना है, तो हम जगत प्रतर को लाख के सातवें भाग से गुणा किया तो हमको उसको मिल जाएगा। कल इसकी बात फिर उठाते हैं, क्योंकि अभी क्या है, सैचुरेट हो गया ना, यही रुकेंगे हम, इसको फिर पढ़ेंगे। तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग कैसे होता है ना, इसका समाधान जो लिखा है वहां से पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।